प्राण है कि जो कुछ है परमात्मा का है, इस शरीर परमात्मा का है, धन परमात्मा का है, हम इसके ट्रस्टी हैं। तो इस धन से, इस शरीर से जो परमात्मा ने दिया है, गलत काम न हो। पिछले जन्म में परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर दिया था, लेकिन परमात्मा की सुंदर दी हुई चीज का दुरुपयोग किया, इसलिए आप कुष्ठ रोगी हो गए। परमात्मा ने पिछले जन्म में बड़ी सुंदर आंख दी थी, लेकिन आप नहीं देखे तो अंधे हो गए। परमात्मा ने पिछले जन्म में बहुत धन दिया था, लेकिन आपने गलत उपयोग किया, निर्धन बन गए। परमात्मा माई बाप है। आज भी कई बार पेपर में पढ़ता हूं, मेरी प्रॉपर्टी में मेरे पुत्र का कोई हिस्सा नहीं। क्यों? नालायक बन गया होगा इसलिए। विचार करो तो दूसरा सोपान जो दोपान में उसके आगे का है, हम सब परमात्मा के हैं, सारी चीज परमात्मा की है, और उस परमात्मा को भी कर्म करना पड़ा। ऐसा नहीं, सीता ने मर्यादा तोड़ी, दुख भोगी, और मेरे हिसाब से तो मैं कहूं सीता का मन गया सोने में, तो हमारे प्रभु ने सोचा बिना पति के लंका में रहे सोने की लंका में, तो पता चलेगा कि पति के बिना क्या सुख और क्या दुख आता है। विचार करो। इसलिए हम सब जो जीव हैं, परमात्मा में ध्यान करें, परमात्मा में रुचि रखें, उसका सब कुछ दिया हुआ है। और फिर से कहूं, कहीं कोई खंडन नहीं है। बड़े मकान बनाओ, बड़े बिजनेस करो, बहुत बड़े वकील बनो, बहुत बड़े डॉक्टर बनो, मंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, सन्यासी बनो, आचार्य बनो, महामंडलेश्वर, जो बनना चाहो बनो, लेकिन आनंद की जो अनुभूति करा रहा हूं वो परमात्मा को छोड़ने से नहीं, परमात्मा से दूर जाने से नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सब में परमात्मा को देखो, परमात्मा का सत्संग सुनो, परमात्मा का नाम लो, और अपना कार्य करते रहो, कर्म करते रहो। ये ध्यान का दूसरा सोपान है। कल गुरु पूनम है, ध्यान भी बताऊंगा और भी व्यवहारिक बात बताऊंगा। हमारे एक अच्छे भजन करने वाले आए हैं, हमारे गांव के ही हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो जब तक आप लोगों को भजन सुनना हो आप सुनिए। तो आप कहें स्वामी जी आप बैठे हुए कि नहीं, आप तो जानते हो मैं तो 12:30 बजे आपके लिए जागता हूँ। तो आपको जब तक भजन, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, ये आपको भजन सुनाएंगे। कल फिर आपके सामने आऊँगा। थोड़ी बरसात की व्यवस्था है, कोई नहीं, परमात्मा जो कर रहा है ठीक कर रहा है कि नहीं, इसकी चिंता न कीजिए। और नहीं तो कभी ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, कभी बार कई लोग मुझे क्या कहते हैं बताऊँ आपको, कहते स्वामी जी आप तो बड़े सिद्ध हो, जा बताऊँ। मैंने कहा क्यों? कहते आप ऐसा करते हो ऐसा करते हो। तो मैं बताऊं, इस बार मैंने सिद्धि का उपयोग नहीं किया, ये देखना चाहता हूं कि हमारे चेले कितने सिद्ध हैं। तो चेलों की सिद्धि यही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मन परमात्मा में से हटे नहीं, इससे बड़ी सिद्धि दुनिया में जो है कोई नहीं। तो जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, ईश्वर की व्यवस्था में सब ठीक है। राम इतने थे बलवान, कृष्ण इतने थे, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं स्वामी जी राम इतने थे लेकिन सीता पर तकलीफ क्यों आई? तो राम यही देखना चाहते थे कि एक बार तो मृग में मन लगाया, अब कहाँ मन है? फिर राम ने देखा मेरे सिवा कहीं नहीं है। अरे हाथ जोड़ के कहता हूं, राम ने हनुमान की भी परीक्षा ली है। हनुमान बहुत ऊंचे हैं लेकिन एक बार संजीवनी का जब प्रसंग आया तो हर काम राम का नाम लेके करते थे, लेकिन संजीवनी लेने गए तो राम का नाम, और क्या हालात हो गए, जा विचार करो। मैं बड़े प्यार से घर में कर रहा हूं, परिवार में सिद्धियों का प्रभाव बढ़ता है, परिवर्तन नहीं आता। अब मैं ज़्यादा सिद्धियों का उपयोग नहीं करूँगा, आपके जीवन को रूपांतरित करूँगा। अब तक बहुत सिद्धियाँ दिखा चुका और दिखाता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। कितनी सिद्धियाँ दिखाया और कोई रूपांतर नहीं हुआ। बस महाराज जी दो कारखाना हो जाए, दो बच्चे हो जाएं। कारखाना तो होगा उसकी बात नहीं, बच्चे भी होंगे, लेकिन जो अब मैं चाहता हूँ आप लोग रूपांतरित करो। किस में कितनी शक्ति थी, बड़े प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन एक के बाद इतना दुख क्यों आया? आप मेरे से पूछते हैं लोग, मैंने कहा नहीं। किस जहां जरूरत पड़ी बड़ी सिद्धियां दिखाए, लेकिन इनको तैयार कर रहे थे। सिद्धियों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति तैयार नहीं होता, यही मैं आपसे कहूंगा। अब मैं कृष्ण की नीति को अपना रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं। किसने कितनी सिद्धियां दिखाई, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, उनको अर्जुन को युधिष्ठिर तैयार करना था। हे मेरे शिष्यों, प्यारे शिष्यों, अब मुझे आपको तैयार करना है ताकि समाज और देश का निर्माण हो। सिद्धियों से केवल प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। अब मैं आपके निर्माण में लगना चाहता हूँ, इतना इशारा करता हूँ। आप लोग भजन सुने और मुझे आपके निर्माण में जो कुछ विचार करना है, ध्यान करना है, मुझे जाने दीजिए। हरि ओम दर्शन
जगद्गुरुम् ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रियात्मन, उपनिषदों में विद्या और अविद्या का विचार किया गया है। विद्या जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक बनते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं। अध्यात्म का संबंध हर नर और नारी की साधना से है। धर्म का संबंध पूरे जगत से है। विद्या, आम तौर से आप अविद्या का अर्थ लगाएंगे अज्ञान, लेकिन गहराई से उपनिषदों का अध्ययन करें तो पता चलेगा, हम सारे जगत को जान गए लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। और आज की परिभाषा में कहें तो अविद्या का अर्थ होगा साइंस, विज्ञान। साहब ने थोड़ा जिक्र किया ना, इसलिए आपको बता रहा। आप पूरे जगत को पहचान गए लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाए। गहराई से अध्ययन करने पर पता चलेगा, जब तक आप अपने को नहीं जान पाएंगे, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक जीवन में आनंद सुख का प्रवेश नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने किसी भी तरह से जो कुछ भी जगत में आप उपलब्धि करते हैं, आप राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, करोड़पति बने, कहीं कोई खंडन नहीं है। आप जो दुखी हैं, दुख से निवृत्त कैसे बने? कहीं ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा न उठाए। सिर्फ यह है कि जहां आप हैं, आप दुखी क्यों हैं? उस दुख से निवृत्ति के लिए विद्या की बात कही गई। जा विचार करो, विद्या को अमृत माना गया। अमृत का अर्थ है सुख, शाश्वत। जिस ज्ञान से आप अमृत की, आनंद की प्राप्ति करते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं, उसे हमने विद्या कहा। अविद्या के यहां अर्थ अज्ञान नहीं है। हम सारे जगत को जान गए लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। अब वही बात अंबालाल साहब ने जो इशारा किया, हमारे पास दोनों चीज होनी चाहिए। हमारे पास आज विज्ञान है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, अविद्या का अर्थ विज्ञान लगाइएगा, विज्ञान साइंस। पूरे विश्व के लोगों के पास विज्ञान है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है। उसका कारण है कि उनके पास अपनी शक्ति की जानकारी नहीं है, विद्या नहीं है। हम अपने आप को जान लें। जिस रास्ते से आप अपने आप को जान लेते हैं वो अध्यात्म है, वो विद्या है। अगर आप गीता की बात करें, साहब ने थोड़ी गीता की बात की, जब तक अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तर्क करता रहा, बातचीत करता रहा, स्वर्ग और नरक की बात करता रहा, पाप और पुण्य की बात करता रहा, लेकिन प्रिय आत्मन आप देखते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, जिसे हम जगत गुरु मानते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को विद्या का, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो जा विचार कीजिए, साहब ने जो कहा है उसी को मैं विस्तार कर रहा हूं। अगर आप विज्ञान की बात करें, आई एम नॉट अगेंस्ट द साइंस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं तो आप कहे स्वामी जी विज्ञान के विरोध है। अर्जुन कितना समर्थ है, भगवान कृष्ण कितने समर्थ हैं, और भगवान कृष्ण के पास विद्या और विज्ञान दोनों है, अध्यात्म और विज्ञान दोनों है। सुदर्शन चक्र की बात करें, उनकी अपनी शक्ति की बात करें, आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन को जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तर्क करता रहा, पाप और पुण्य की बात करता रहा, कर्म करने से भी इनकार कर रहा था, संन्यास की बात करने लगा, लेकिन प्रिय आत्मन जगत गुरु कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को अपनी उपलब्धि हुई कि मैं कौन हूं, तो सहज भाव से कर्म में लग गया। एक बड़ी ऊंची बात है। आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, अध्यात्म आपको आपके स्वरूप का, आपकी शक्ति का परिचय कराता है, और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे अर्जुन सहज रूप से कर्म में लग गया, वैसे हम आप भी सहज रूप से कर्म में लग जाएंगे। आप समाज की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, उसके पालन में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, पुत्र को पढ़ाने में, पुत्री को पढ़ाने में, शादी विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को, उत्तरदायित्व को समझ लोगे। जगत गुरु कृष्ण ने दिखा दिया अर्जुन को कि सारी व्यवस्था देख, केवल तुझे अपना रोल अदा करना है। यही मैं आपसे कहता हूं, हमें और आपको 100 वर्ष का रोल मिला है। आपका कभी विनाश नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी पिक्चर में काम करता हो, बड़े प्यार से कहता हूँ, एक पिक्चर में मर गया लेकिन दूसरी पिक्चर में काम कर रहा, एक पिक्चर में पागल की भूमिका में है तो दूसरी पिक्चर में प्रोफेसर की भूमिका में है, तो हम आप भी किसी जन्म में पागल भी रहे होंगे, प्रोफेसर भी रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे। अब इस जन्म का क्या रोल है ये आपको समझाना, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। कई बार लोग मेरे से कहते हैं, स्वामी जी जब सब कुछ वो कराता है, वो निर्देशन देता है तो हम क्या करें। यही समझने की बात है प्रिय आत्मन, जब नाटक में आपको राम का रोल मिला, हनुमान का रोल मिला, तो निर्देशक निर्देशन देगा लेकिन निर्देशक स्टेज पे नहीं आएगा। वो हनुमान का रोल कैसे करना वो आपको करना पड़ेगा जिसको दिया गया, राम का रोल। और हाथ जोड़ के कहूँ, राम के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए, राम के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हे प्यारे निर्देशक, आप किसी को रावण भी बनाएंगे, नहीं तो राम की कहानी चलेगी कैसे। महाभारत की बात करेंगे तो किसी को दुर्योधन कंस बनाना पड़ेगा। अब ये समझिए, आप गए पिक्चर देखने, एक के बाद एक सीन आपके सामने आएगा और जब रावण मर गया तो राम की कहानी खत्म। लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी मैं इतना अच्छा हूं, ये दुनिया कब तक विरोध करेगी। मैंने कहा, जब तक आपका रावण मरेगा नहीं। सबसे पहले तो हमारे अंदर रावण का वास हो गया है, आपको बताऊंगा। जा विचार करो, अभी एक भूमिका मैं आपको देना चाहता हूं। अक्सर जो मेरे सामने प्रश्न उठता है, स्वामी जी भगवान कर रहा है मैं क्या करूं, जब निर्देशक कह रहा है कि राम ऐसा करो, वही रावण को भी कह रहा है। ये जो आपको राम का पाठ मिला, आप कलेक्टर बने, प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, सन्यासी बने, जा विचार करो, इसी रोल को अच्छी तरह अदा करना, यही आपका धर्म है। आपको राम का रोल मिला, जो निर्देशक है, स्टेज की बात कर रहा हूं, वो आपको पर्दे के पीछे रह करके निर्देशन देगा, डायरेक्शन देगा, लेकिन पार्ट आपको अदा करना। आप डॉक्टर बन गए, अब वो चाहता है डॉक्टर रोल अच्छी तरह करो। आप वकील बन गए, वो चाहता है वकील का रोल अच्छी तरह करो। आप सन्यासी में आए, वो चाहता है कि आप जो सन्यास की मर्यादा है, धर्म है, उसका रोल अच्छी तरह करो। 20-25 दिन की बात है, एक व्यक्ति आए मेरे पास, अपने ढंग से किसी की निंदा करने लगे, चुप रहा चुप रहा, कहते स्वामी जी आप कुछ बोलते नहीं। मैंने कहा, मुझे ईश्वर ने सन्यास का रोल दिया है, नारद का नहीं दिया, इसलिए चुप हो। वो चुप हो गए। आप एक सन्यासी का रोल लेकर के नारद की भूमिका कर रहे हैं, कहीं दूध पीने को नहीं मिला, कहीं ये नहीं मिला, क्या छोटी छोटी बातों में सन्यास लेके भूल जाए हुए हो। बड़े प्यार से कह रहा हूं, कोई खंडन की बात नहीं। पहले अपने स्वरूप को समझो, अध्यात्म कहता है, पहले वो बताऊंगा फिर आगे की बात करूंगा। फिर से दोहरा दो, आज पूरे विश्व में हमारी गीता का सम्मान है, क्यों आप वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं। समय समय पर आपके सामने विज्ञान अध्यात्म वेद लेकर आया हूं, लेकिन आज जो आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की बात बताना चाहता हूं। हमारे मास्टर साहब ने कहा, कल भी थोड़ा मैं कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सिद्धियों से केवल आप प्रभावित होते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं। अगर कृष्ण चाहते तो पूरे कौरव पाताल में चले जाते, लेकिन वहां पांडवों की बात व्यक्ति निर्माण की बात है। राम समर्थ हैं, लेकिन राम बता रहे हैं कि नहीं, 14 वर्ष एक व्यक्ति को विशेष व्यक्ति बनने में लगेगा। चाहे आप राम की तरह अवतारी हैं या पांडवों की तरह किसी महापुरुष के, जगत गुरु के शिष्य हैं, व्यक्ति निर्माण की बात है, व्यक्ति विकास की बात है, और व्यक्ति का निर्माण ही समाज और राष्ट्र का निर्माण है। हमारे ऋषि मुनियों का जो चिंतन रहा है, अक्सर कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, स्वामी जी आप सबसे बड़ा चमत्कार क्या मानते हैं? वैसे मैं चमत्कार है, हमारा जन्म ही चमत्कार है, लेकिन अगर आप चमत्कार की बात करते हैं तो कोई कहता है, महाराज जी मंत्र के प्रभाव से एक आदमी आकाश में उड़ता है, तो मैं कहा आकाश में तो कागला उड़ता है, मंत्र ने तो कागला बना दिया। कोई आदमी पानी के अंदर 4-4 घंटे रहता, ठीक है, आप अपनी सिद्धि से पानी के अंदर रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, लेकिन हे प्रियात्मन, इंसान की तरह धरती पर चलना कब सीखोगे? इंसान का इंसान बनना सबसे बड़ा चमत्कार है। इंसान अपनी कमजोरियों को, जो हमारे अंदर जानवर बैठा है, हम सब अपने अंदर के जानवर को जीत लें, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उस जानवर से लड़ रहे हैं, यही साधना है, और उस जानवर से हार गए, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी असफलता है। हमारे अंदर जानवर बैठा हुआ है, हमारे सबके अंदर किसी न किसी रूप में। जा विचार कीजिए, जब कभी मैं भ्रमण करता हूं, देखा है कि व्यक्ति का अंदर का जानवर कितना प्रकट होता है, अपने आप का सत्यानाश कर रहा है जानवर बनकर। उस जानवर को, अंदर का जो जानवर है, अंदर का जो रावण है, उसे जीत लेना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है और चमत्कार है। आप लड़ रहे हो, विकट से विकट परिस्थिति में हार नहीं स्वीकार कर रहे हो। मनोवैज्ञानिकों ने राम के जीवन को देखकर एक वाक्य हमारे आपके लिए कहा, विकट से विकट परिस्थिति में राम राम ही रहे। रावण ने किया, ये किया, वो किया, सब जानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों की बात, विकट से विकट परिस्थिति में राम राम रहे, किसी तरह से हार को नहीं स्वीकार किया। हाथ जोड़कर राम को बहुत मानता हूं, लेकिन वैज्ञानिकों कहने का मतलब, विकट से विकट परिस्थिति में राम का व्यवहार हल्का नहीं बना। और आज दुनिया में पूजे जा रहे हैं, पूज्य बापू, अंतिम बात ले लो, जीवन की तो बहुत बातें हैं, आपने गांधी फिल्म देखी, लेकिन फिर भी हे राम बोले, हाय राम नहीं बोले, हल्का सब नहीं निकला। जीसस क्राइस्ट फांसी के तख्त पर भी, प्रभो ये नादान है माफ करना, हल्का नहीं बोले। अब यही राम से मनोवैज्ञानिक कहते, विकट से विकट परिस्थिति में भी राम हारा नहीं, हल्का नहीं बना। ये हमारे आपके लिए। और आज राम की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, गांधी की हो रही है, टैगोर की हो रही है, सबकी हो रही है, शंकराचार्य जी की, माधवाचार्य जी की, निम्बार्काचार्य की, स्वामी सहजानंद जी की, कबीर की, सबकी बात कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की। आप लोग सब पढ़े लिखे, भगवान बुद्ध का जीवन पढ़े, एक से एक विकट परिस्थिति आई है, लेकिन कभी जीवन हल्का नहीं बना। महावीर का जीवन देखे, विकट से विकट परिस्थिति आई, लेकिन जीवन हल्का नहीं बना। क्यों नहीं हल्का बना? वो आध्यात्मिक थे, अपनी शक्ति को समझ चुके थे। आप नर हैं कि नारी, आप बड़े घर में जन्मे कि झोपड़ी में, आपका जन्म का ही सबसे बड़ा महत्व है। अध्यात्म कहता है एक एक नर और नारी को आध्यात्मिक बनना है। आप मंदिर में जाइए, देरासर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे, उसका कहीं कोई खंडन नहीं है। ये तो लोग हम पर राज किए और हमारी शक्ति को बिगाड़ने के लिए एक दूसरे के सामने कर दिया। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हम जो एक दूसरे के पूरक थे, उसकी जगह हम पर 150 वर्ष राज करने वालों ने एक दूसरे के सामने खड़ा करके विरोधी बना दिया। अब आज वो समझने की बात है, जानने की बात है। आपकी शक्ति का जो निर्माण होना था, वो हमने विनाश में लगा दिया। जिस हाथ से समाज को आपको उठाना था, वो गिराने में लगा दिया। जहां मुझे आपके मुख में रोटी देनी थी, हमने छीनना शुरू कर दिया। जहां हमें आपको कपड़ा पहनाना था, हमने दूसरों कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जब आध्यात्मिक बनेगा तो उसकी दिशा ठीक हो जाएगी। और कृष्ण आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है। जो कुछ कृष्ण ने किया है, आज का विज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। जो कुछ राम ने किया, आज का विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया, और एक दिन पहुंचेगा। आपको बताऊंगा जहां तक पहुंचा है। आप नर हैं कि नारी? अब आप कहें, स्वामी जी पहले मुझे आध्यात्मिक बनाइए। हाँ, पहले आपको आध्यात्मिक बनाना है। ये आपका शरीर, आप नर हैं कि नारी, ये पंच महाभूत से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, विज्ञान इसे एनर्जी मानता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के मेल से आप बने, और खुद विज्ञान कहता है कि एनर्जी का रूपांतर करने के लिए कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आपका एक कमरा एसी का है, एक गर्म है, व्यवस्था एक जगह ठंडी की है, एसी की है, एक जगह गर्म, एक ही समय में एक कमरा गर्म है और एक ठंडा। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया हमारे और आप पर। चलो मैं अपने ऊपर लेता हूं वैज्ञानिकों की बात समझाने के लिए। मनीषानंद को क्रोध आया और हाथ ऊंचा किया। एक ही समय में हाथ दो हैं, आपके पास, मेरे पास। लेकिन एक विचार आया कि मैं किसी को थप्पड़ मारूं, ये हाथ बिल्कुल ठंडा है, ये इसमें गर्मी आई, ये उठा। आखिर मैं क्यों ना इसके साथ उठा के, भाई तू मेरा भाई है, चल उठू मैं तेरे साथ। ये बिल्कुल ठंडा और ये एकदम जोर कर गया। आप अपने विचार के विचार को भी एनर्जी माना गया। आप अपनी व्यवस्था देख लें, एक समय में आपका एक हाथ गर्म हो गया और एक ठंडा पड़ा। यही व्यवस्था ब्रह्मांड की भी है जो आपके पिंड की है। आध्यात्मिक आपको बनना है, आकाश का नाश नहीं, वायु का नाश नहीं, अग्नि का विनाश नहीं, पृथ्वी का नहीं, जल का नहीं, पांच एनर्जी पांच ऊर्जाओं से हम आप नर और नारी के रूप में आए। ऊर्जाओं का जो मिलन है, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इन पांच ऊर्जाओं का जो मिलन है वही हमारा आपका जन्म है, और इन्हीं का विसर्जन जो ये जीवन है उसी एनर्जी का अपने आप विसर्जन जो है वापस जाना। आप थे विराट, विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है। आप थे आकाश, आप थे वायु, आप थे अग्नि, आप थे जल, आप थे पृथ्वी, और पांचों के मिलन से जबरदस्त शक्ति लेकर के नर और नारी के रूप में आ पाए। विचार करो, सोचो। अब आप कहेंगे स्वामी जी एक विज्ञान से और बता दीजिए कि आत्मा में इनका गुण नहीं है, ये पांच ऊर्जाओं से पंच महाभूत से हमारा आपका शरीर बना, लेकिन आत्मा निर्गुण है। विज्ञान आपके समक्ष बड़ी एक छोटी सी बात, पढ़े लिखे सब प्रोफेसर बैठे, डॉक्टर बैठे, अच्छे अच्छे लोग बैठे, पानी का विश्लेषण करो वैज्ञानिक दृष्टि से, तो फार्मूला वैज्ञानिकों ने हमें दिया H2O। साधारण भाषा में पानी का वैज्ञानिक ढंग से जब आप विश्लेषण करेंगे तो दो भाग हाइड्रोजन है, एक भाग ऑक्सीजन है, लेकिन प्रियात्मन खुद विज्ञान कह रहा है कि पानी का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने पर दो भाग हाइड्रोजन है, एक भाग ऑक्सीजन है, लेकिन पानी में न हाइड्रोजन का गुण है न ऑक्सीजन का है। अब यही देखिए, पंच पढ़ा लिखा कि पंच महाभूत से इस शरीर बना, पंच महाभूत से शरीर बना, लेकिन महावीर बुद्ध बनने की बात वो मैं आपको बताना चाहता हूं। विवेकानंद हमारे सामने, रामकृष्ण है, अरविंद घोष है, रमण महर्षि, सबकी बात कर रहा हूं। किसी चीज का रूपांतर विज्ञान ने स्वीकार किया, पीड़ा संघर्ष गति, विज्ञान कहता है बिना पीड़ा के, बिना संघर्ष के, बिना गति के किसी चीज का रूपांतर नहीं होगा। एक छोटी सी बात, समझने लायक बात, मिट्टी में से घड़ा आप बनाए, मिट्टी अस्तित्व है, आप मिट्टी नहीं बना सकते, लेकिन मिट्टी में से घड़ा बना, कुछ भी बनाइए, मैं घड़े की बात कर रहा हूं, मिट्टी आप नहीं बना सकते, लेकिन मिट्टी में से घड़ा बना सकते हो, ग्लास बना सकते हो, मिट्टी में से बड़े प्यार से राम बना सकते हो, रावण भी बना सकते हो, कृष्ण भी बना सकते हो, कंस भी बना सकते हो, दुर्योधन भी बना सकते हो, अर्जुन भी बना सकते हो, है मिट्टी वही है, अस्तित्व वही, लेकिन वो मिट्टी में से बड़े प्यार से कह रहा हूं, समझिए। मिट्टी को पहले पीड़ा देनी पड़ेगी, फिर उसे चाक पर रखिए, कैसे रखिए, हाथ से कीजिए, उसे चोट पहुंचानी पड़ेगी, घर्षण, फिर गति देनी पड़ेगी। इसी घर्षण में, इसी पीड़ा में ताप भी आ जाएगा, और आप अग्नि के बीच में रखकर उसे तपाकर पक्का बनाते, वो भी आ जाएगा। गांधी जी का जीवन लो, कितनी पीड़ा। एक बार किसी के घर पे गया, विद्यार्थी कहता है कि स्वामी जी मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन लोग मुझे पीड़ा क्यों देते हैं, परेशान क्यों करते हैं। दीवाल पर देखा महात्मा गांधी का चित्र था। मैंने कहा बेटा ये दीवाल पर बापू का चित्र देख रहे हो? कहते हां गुरुजी। चार कोने पर चार खीले हैं? हां गुरुजी। गांधी जी का चित्र आज ऊंचा रखने के लिए भी चार कोनों पर चार खीले हैं, तो गांधी जी जिंदगी में कितनी खीले सहन किया होगा कि आज उनकी फोटो भी ऊपर रखने के लिए चार खीले लगानी पड़ी हैं। अरे ये लोग तेरे को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए सहन करना पड़ेगा उस पीड़ा को। यही बात सबके लिए, जिसको भी आप महान मानते हैं उसके जीवन में देखेंगे कितनी पीड़ाएं आई, कितना संघर्ष आया, कितना आघात आया, कितनी चोट आई। चाहे मैं राम की बात करूं, पांडव की बात करूं, महावीर की बात करूं, भगवान बुद्ध की बात करूं, जीसस क्राइस्ट की करूं कि पैगंबर के, थे समर्थ, लेकिन व्यक्ति निर्माण की बात, ये सब प्रोसेस से, ये सब विधि से गुजरना पड़ेगा। और इस सब विधि को नहीं अपनाओगे तो एक आम की तरह रहकर जीवन बिता दोगे। कुछ विशेष बनने के लिए सब कुछ आपके पास है। मैंने कहा मिट्टी कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी, लेकिन मिट्टी में से आप क्या बनाना चाहते हैं, राम को कि रावण को? आपके अंदर भी मिट्टी है, इसे एनर्जी विज्ञान ने माना। इस एनर्जी का रूपांतर किसमें करना चाहते हो? आपके अंदर जल है, इस जल का रूपांतर किस तरह करना चाहते हो? इस अग्नि का रूपांतर किस तरह करना चाहते हो? वायु का रूपांतर किस तरह, आकाश का किस तरह, या विचार करो। यही स्वतंत्रता हमें आपको मिली है, पशु को नहीं मिली, मच्छर को नहीं मिली, शेर को नहीं मिली, हमें आपको। आप अपने जीवन का रूपांतर जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जबरदस्त पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, संघर्ष को अपनाना पड़ेगा और गति बनाए रखनी पड़ेगी। जहां गति रुक गई, विकास रुक गया। प्रिय आत्मन साहब ने थोड़ा अपने स्वागत प्रवचन में कहा, राम की बात की, कृष्ण की बात की, ऊर्जा की बात की, साहब के प्रवचन का विस्तार कर रहा और आपके लिए कहा, मेरे लिए कहा, सबके लिए कहा। ये आप समझ लो पहले, हमेशा आप थे, हैं और रहेंगे। ये आकार का विनाश हो रहा है, हमेशा आप रहे। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ये उपदेश कई बार मैंने तुझे दिया, तू भूल गया, मुझे याद है। गेहूं गेहूं होगा, चना चना होगा, ये चक्र चलता रहेगा। अस्तित्व का विनाश नहीं है तो आपका कैसे विनाश होगा? विसर्जन होगा, विसर्जन से नए अस्तित्व में आओगे, लेकिन गेहूं विसर्जन के बाद गेहूं ही बनेगा। चने का विसर्जन होगा लेकिन चना ही बनेगा। आम के गुठली का विसर्जन होगा लेकिन अंत में गुठली बनेगी। तो प्रिय आत्मन, हमारा आपका समय समय पर विसर्जन हुआ है और फिर नए सृजन में हम आ पाए। अध्यात्म की पहली सीढ़ी है कि हम आप अविनाशी हैं, और इसको अगर समझ लें तो मरण को विसर्जन मानेंगे। और विसर्जन जब समझ में आ जाएगा कि नवसर्जन के लिए है तो क्यों रोएंगे? उसी बात को गीता में, ये विज्ञान वाली बात गीता में, कपड़ा पुराना हो गया अर्जुन, तू वही है, कपड़े बदलने पड़े, कपड़े कर शरीर से लिया गया, अस्तित्व में आत्मा में तू वही है, लेकिन जैसे समय समय पर हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे समय समय पर शरीर बदला है, आत्मा वही की वही है। पूरा विज्ञान अब सहमत हो गया। कितने लोग मेरे पास आते, बड़े प्यार से कहूं, कहे स्वामी जी 90 साल को हो गया अभी और कितना जीऊंगा। मन का 90 साल में इतना अच्छा काम कर जाओ कि लोग आपका नाम लेते रहें, क्योंकि जब तक आपका नाम लोग लेंगे तब तक आप जीवित हैं, और जीते जी भी लोग आपका नाम नहीं जानते नहीं लेते तो मरे हुए हो। जीने की इच्छा होगी, मैं उसका खंडन नहीं करता, लेकिन जा सोचो तो सही, राम को आज तक हम लेते हैं, राम हैं, कृष्ण का नाम आज तक लेते हैं, गांधी का नाम आज तक ले रहे हैं, लेते रहेंगे जब तक है। एक छोटी सी बात बताऊं केवल जानने के लिए, हमारा मन कैसे भटकता, हमारा मन कैसे विचार करता है। स्वामी जी मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं, बड़े प्यार से कहता। मैंने कहा कि स्वर्ग की कल्पना क्या है आप बताइए मुझे। कहे ऐसा है ऐसा है। तो मैंने कहा आज आपके पास किस चीज की कमी है जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, किस चीज की कमी है आपको? अच्छे पुत्र हैं, पुत्र वधू है, आप कहते हो ऐसा, अच्छा भोजन है, ये है। नहीं नहीं स्वामी जी बताइए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहता हूं जैसा कहता हूं तू स्वर्ग में रहे रह रहा है, लेकिन तू आज, मनीषानंद के बाद, आज सब कुछ हमारे पास है, आज हम अपने घर को पवित्र नहीं बना सके, मंदिर नहीं बना सके, शुद्ध नहीं बना सके, या स्वर्ग की कल्पना के अनुसार अपने घर को नहीं बना सके, तो हे प्रिय आत्मन, आज सब कुछ है और आज हम नहीं अच्छा बना सके तो मरने के बाद कैसे मनीषानंद कहें कि आप अच्छा बनाओगे? महाराज जी बड़े प्यार से कह रहा हूं मेरे सामने, महाराज जी यही पत्नी अगले जन्म में मिलेगी कि दूसरी? मैंने कहा जरा पत्नी से पूछो वो क्या चाहती है। अरे जीते जी जिसे देख रहे हो, बड़े प्यार से कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें, आप यहां इतने लोग बैठे आपको किस चीज की कमी है आप बताइए, सब मैं जानता हूं। यहां अच्छे से डॉक्टर बैठे, प्रोफेसर बैठे, इंजीनियर बैठे हैं, पंजाब से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, रतलाम से आए हैं, बंबई से आए हैं, बाकी गुजरात तो अपना है ही सब पूरा, सबको मैं जानता हूं, किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। आप सोचते हो कि स्वर्ग कैसे जाऊंगा, ये सोचने में ये सारी कमी महसूस हो रही है। बस आज की अच्छी तरह रोटी खा रहे हो लेकिन सोच रहे हो कल पूरी मिलेगी कि नहीं, एक कल की चिंता में आज का स्वर्ग आज का आनंद आपने विसर्जित कर दिया। आज जो कुछ हमें मिला है कल नहीं रहेगा। आप लोग पंजाब से आए, हमारे अपने पंजाब से आए, दिल्ली से आए, रतलाम से आए, बंबई से आए,